खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله। एक मरतबा फिर हम अपने प्रोग्राम कसस और औलिया में हाजिर हैं, जिसमें हम औलिया किराम के वाकयात बयान करते हैं। इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया आपने सुना, उनकी तौबा का वाकया, और फिर जब उन्हें मकाम विलायत मिला, मकाम विलायत मिलने के बाद उनकी ज़बान में वो तासीर पैदा हो जाती है अल्लाह के बंदों की कि वो जो नसीहत करते हैं वो गोल्डन वर्ड बन जाते हैं। जी हाँ, अनमोल हीरे बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया नसीहत का आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी नसीहत की बातें हैं, अगर आप तवज्जो रखेंगे और पूरा सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह आपको नसीहत के मदनी फूल मिलेंगे। कहते हैं कि इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर गुनाह सरजद हो जाते हैं और इसका कुछ इलाज इरशाद फरमाइए। तो आपने बड़े ही प्यारे अंदाज से उसको नसीहत की, और नसीहत का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प। पहली नसीहत तो ये फरमाई कि जब तुम गुनाह करने का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो। उस शख्स ने कहा हज़रत आप कैसी नसीहत कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रज़ाक है, रोज़ी वो देता है, उसकी रोज़ी छोड़कर भला मैं किसकी रोज़ी खाऊंगा। तो फरमाया देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार की रोज़ी खाओ और उसकी नाफरमानी भी करो। सही बात फरमाई आपने। दूसरी नसीहत क्या की आपने, फरमाया जब गुनाह करने का इरादा हो जाए तो ऐसा करो अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल जाओ। कहा हुजूर ये कैसी बात कर रहे हैं, अरे मशरिक मगरिब शुमाल जनूब किधर जाऊंगा, अल्लाह ही का मुल्क है, अल्लाह ही की बादशाहत है, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, सब मुल्क अल्लाह का है, सारी बादशाहत अल्लाह की है। आपने फरमाया तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह के मुल्क में भी रहो और फिर उसकी नाफरमानी भी करो। फिर आपने तीसरी नसीहत की और कहा जब तुम्हारा पुख्ता इरादा हो जाए तो बस अब गुनाह कर डालना है तो अपने आप को छुपा लो कि अल्लाह तुम्हें देख ना सके। कहने लगे हजरत ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह मुझे ना देख सके, अरे वो तो दिलों के आवाज से भी बाखबर है और वो तो सब जानता है, दिल में जो खतरात गुजरते हैं ना उससे भी बाखबर है, और वो अल्लाह तो समीउ बसीर है। फिर चौथी नसीहत की और कहा कि काम करो कि जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज करने आए तो तुम उनसे कहना कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, जरा मैं तौबा कर लूं, इसके बाद मेरी रूह कब्ज करना। अर्ज किया हुजूर मेरी क्या औकात कि वो मेरी बात सुने, मौत का वक्त मुकर्रर है हुजूर, मुझे तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी, फौरन मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। फरमाया जब जानते हो कि मैं बेख्तियार हूं, तौबा की मोहलत हासिल नहीं हो सकती उस वक्त, तो फिर अभी से क्यों नहीं तौबा करते और इन लम्हात को क्यों नहीं गनीमत जानते, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं करते। फिर आपने पांचवी नसीहत की कि तुम्हारी मौत वाकई हो जाए और तुम्हें कब्र में रख दिया जाए और नकीरें ना आए तो इनको कब्र से हटा देना। कहा हुजूर के क्या फरमा रहे हैं आप, मैं उन्हें कैसे हटा सकता हूँ उन फरिश्तों को, मुझ में ऐसी ताकत कहाँ। फरमाया जब तुम नकीरें इनको नहीं हटा सकते तो उनके सवालात के जवाबात की तैयारी अभी से क्यों नहीं कर लेते। फिर आखिरी नसीहत करते हुए कहा, फरमाया अगर क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुनाया जाए तो कह देना नहीं जाता। क्या हुजूर وہاں تو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے, اس کے ملک سے بھی باہر نہیں جا سکتے, اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے, نکیرین کو بھی نہیں ہٹا سکتے, اور جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے ٹال بھی نہیں سکتے, تو پھر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس شخص نے ابراہیم بن آدم کا تجویز کردہ گناہوں کے علاج کا یہ نسخہ اپنا لیا, چار و قطار رونے لگا اور اپنے گناہوں سے اس نے سچی توبہ کی, اور مرتے دم تک وہ اپنی توبہ پر قائم رہا. یہاں سبق یہ ملا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے, وہ جو نصیحت کرتے ہیں, ان کے جو ملفوظات ہوتے ہیں, ارشادات ہوتے ہیں, وہ ارشادات اور ملفوظات دل پر تاثیر کا تیر کے مانند اثر کرتے ہیں اور دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے, نیک صحبت میں بیٹھا جائے تاکہ اس کا اثر ہمیں ہو. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین نصیحت کی. یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی اللہ کی روزی کھاتے ہیں, ہم بھی اللہ کے ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی قبر میں جانا ہے اور نکیرین کے سوالات کا سامنا کرنا ہے, یہ سب کچھ ہم نے بھی کرنا ہے. تو پھر ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو گناہ سے باز آئیں اور نیکیوں کو اپنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولی.